हरे कृष्णा प्रिय फरीदाबाद भक्तवृंद,
हरे कृष्ण।
नव वर्ष के आगमन में श्रीमद् भागवत के प्रातः काल के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद, जो भगवान श्री कृष्ण का मुख मंडल है मुस्कुराता हुआ, उसके अंतर्गत दसवां अध्याय, जिसमें नल कुबेर और मणि ग्रीव कुबेर के दो पुत्रों का नारद जी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का सन्मुख दर्शन, सानिध्य और कृपा प्राप्त हुई, उन दो नारद कृपा पात्र मणि नल ग्रीव और मणि ग्रीव और नल कुबेर की भगवान श्री कृष्ण जो 2.5-3 साल के हैं मुश्किल से, और उखल में मां यशोदा की प्रेम की रस्सी से बंधे हुए हैं, और दोनों वृक्ष के रूप में इन दो भगवान शंकर के अनुचर धन के देवताओं के अधिपति कुबेर के पुत्र अपराध के कारण गंगा जी, जिसमें पाप धोने जाते हैं, वहां मदरा पीकर नंगे नारियों के संग में नाच करते हुए नारद की कृपा के पात्र बने। वृक्ष तो बने, लेकिन वृक्ष बने नंद भवन में, और उनने पश्चाताप किया, नारद जी ने कृपा की और श्री कृष्ण का दर्शन, बाल लीलाओं का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और भगवान ने जब उन दोनों का उद्धार किया, वो वृक्षों से अपने देव रूप में आ गए, तो उन्होंने जो भगवान की प्रार्थना की है, उस प्रार्थना का ये अंतिम श्लोक है। ये प्रार्थना की पूर्ण आहुति का श्लोक है। दोनों भाई हाथ जोड़ के कह रहे हैं, वाणी गुणानु कथने शरवणो कथाया हस्तो चकरमसो मनस्तव पादयोरना स्मृत्यान श्रस्तव निवास जगत्रनामे दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवत्तनुना। प्रार्थना का भाव है दोनों का, वाणी गुणानु कथने, हमारी वाणी से आपके रूप गुण नाम लीला का कथन करें, कीर्तन करें, ये आप हमारे को आशीर्वाद दीजिए श्री कृष्ण, ये हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि हमारी वाणी आपके गुणों का, गुणों के अंदर नाम रूप लीला सब आ गया, उनका कथन करें। श्रवणौ कथायां, और हमारे कान आपकी कथा केवल एकमात्र सुने। हस्तौ च कर्मसौ, हमारे हाथ हमारे पांव हमारी जो भी इंद्रियां हैं, आंख वो भी इसके अंदर आ जाएगा, जीभा, ये सब आपके ही सेवा में लगे। मनश्च तव पादयोर नः स्मृत्याम्, हमारा मन आपके चरण कमलों के स्मरण में नित्य तलीन रहे। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, और हमारा सर हमारा माथा पूरे जगत में आप निवास करते हैं भगवान, जहां जो कुछ है आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है संसार में, और ये सर हमारा आपको, हे जगन निवास आपको प्रणाम करे। दृष्टे सताम दर्शने, आंखों से हम आपके भक्तों का दर्शन करें। सताम का अर्थ है भक्त। आंखों से हम आपके भक्तों का दर्शन करें। कैसे हैं भक्त? अस्तो भवत तनु नाम, वो सारे भक्त आपका ही प्रतिनिधित्व करते हैं, आपका शरीर है, अथवा आप भक्तों के शरीर में सदा निवास करते हैं। भक्त आपको अपने हृदय में सदा धारण करते हैं। भक्त गोविंद तव हृदय गोविंद विश्राम, भक्त के लिए तो कहा यह है कि तुम्हारे हृदय में गोविंद का विश्राम है। सो ये श्लोक में 6 अंग भक्ति थे तो स्पष्ट है, 9 भक्ति के 6 अंग स्पष्ट है। ये बहु अंग भक्ति है, जैसे अम्बरीश महाराज की सर्वांग भक्ति है, ऐसे प्रायः ये सर्वांग भक्ति है। तो श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं, अब से मतलब अब हम मुक्त हो गए वृक्ष योनि से, अब से आगे हमारी वाणी आपकी लीलाओं का वर्णन करे और आप हमारे कान आपकी कथा का श्रवण करे। हम आपकी महिमा गाएं और आपकी महिमा सुने। हमारे हाथ पांव और अन्य इंद्रियां, आंख जीवा आदि सब, त्वचा सब, ये आपकी प्रसन्नता के लिए कार्यरत रहें और हमारा मन सदा आपके चरण कमलों का स्मरण करता रहे, और हमारा सर इस विश्व में, इस जगत में जिस में आपका निवास है, उन सब के प्रति जो जो भी है सब में आपका प्रवेश है, उन सब को प्रणाम करें। और हमारी आंखें वैष्णों का दर्शन करें जो आपसे अभिन्न है। श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में ये 2 नारद के कृपा पात्र भक्ति, भगवान की जो भक्ति का साधन है, उस भगवान की भक्ति के साधन का अति उत्तम निरूपण कर रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णुः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये 9 भक्ति है। श्रवण करना, कीर्तन करना भगवान विष्णु का, श्रवण करना और स्मरण करना, पाद सेवन करना, अर्चन करना, पूजा करना, और वंदना करना, दास्यम सेवक बनना, सखा बनना और आत्मनिवेदन करना। प्रभुपाद जी कहते सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्यों? ये सब इंद्रियां हैं जिनके कार्य हैं, ये क्यों भगवान की सेवा में लगाना चाहिए? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ऋषिकेण का मतलब है इंद्रियां, और ऋषिकेश का मतलब इंद्रियों का स्वामी। हमारी इंद्रियां इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगे तो उसको कहते हैं भक्ति। ये नारद पंचरात्र में भक्ति की व्याख्या है। सब कुछ जो कुछ हमारे पास है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जो कुछ मोरा मानस देह गेह, जो कुछ मोरा अर्पितला तोहे नंद किशोर। ये भाव है कि सब कुछ भगवान को अर्पण करना है। तो सब कुछ मन शरीर इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, और ये कहां से सीखना चाहिए? प्रभुपाद जी के ये सीखना चाहिए नारद जी से, देव ऋषि नारद से सीखना चाहिए जो भक्ति के आचार्य है, स्वयंभू मनु से सीखना चाहिए जो परंपरा में है और महाजनों में एक महाजन है, शंभू से सीखना चाहिए जो वैष्णव रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो भक्ति का मार्ग है ये कोई अपने मन से बना नहीं सकता और इसको समझ और उसके द्वारा भगवान को समझ ले ये संभव नहीं है, इसलिए परंपरागत ही इसको समझना चाहिए। और ऐसे जो अपने रास्ते बनाते हैं उनको कहते हैं यत मत तत पथ। यत मत जैसे उसका विचार, तत पथ उसका ऐसे रास्ता। ऐसे आजकल कल युग में कितने ही तथाकथित मत और पथ चल रहे हैं जो कोई प्रमाणिक नहीं है, किसी परंपरागत नहीं है, और ऐसा जो कार्य करते हैं प्रभुपाद जी लिखते हैं ये मूर्खता है। और बहुत से मूर्ख ऐसा रास्ता बनाते हैं और अन्य मूर्ख उसका पालन करते हैं और ये पूरा कलयुग ऐसे ही मत बतात्रों के पथ पंथों से। इसको भागवत में अन्य स्थान पे कहा गया है पशु पथ। जैसे जंगल में पशु जाते हैं ना तो वो छोटा छोटा रास्ता बनाते हैं, उसके ऊपर चलने वाले एक रास्ता दूसरे में मिलेगा, दूसरा तीसरे में मिलेगा, वो जंगल में ही भटक जाएगा। इस संसार रूपी जंगल से बाहर निकलता है तो राजमार्ग एक है भक्ति का, वो हमको भगवान के चरणों तक ले जा सकता है। बाकी पगडंडियां पशुओं की बनी हुई है, ये सब तथाकथित यत मत तत पथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मूर्खों को बनाए हुए रास्ते ये पगडंडियां हैं, और ये कैसी पगडंडियां हैं, पशु की पगडंडियां हैं। ये कभी भी हमको संसार रूपी जंगल से बाहर लेने जाने में समर्थ नहीं है। इसलिए जो राजमार्ग महाजनों ने बनाया है उस राजमार्ग पे चलना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं केवल एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं कि केवल भक्ति के भक्त्या अहम एकया ग्रहाय, केवल भक्ति के मार्ग से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। और श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, भगवान के अनुकूल भक्ति मन शरीर और वाणी से, इंद्रियों से, शरीर से, मन से, वाणी से जो भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल सेवा की जाए उसको भक्ति कहते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं दोनों भाई कहते हैं कि हम नारद के सेवक हैं, अनुयायी हैं, देव ऋषि नारद के अनुयायी हैं, उन्होंने हमारे ऊपर अति कृपा की है, नारद जी के हम कृपा पात्र हैं, अब हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं और जो आपसे हम मांगने जा रहे हैं वो बहुत दुर्लभ है, वो किसी को प्राप्त नहीं होती है, इसका मतलब भक्ति बहुत दुर्लभ है। अति दुर्लभ है भक्ति। और ये च सबके साथ लगेगा, हमारी वाणी सदा ही आपके गुणों का वर्णन करे और कुछ नहीं, च का मतलब और कुछ नहीं, केवल आपके गुणों का वर्णन करे, हमारा मन निरंतर आपका स्मरण करे, हमारा सर हमारा माथा जगत में सबके सामने, किस किसके सामने प्रणाम करे, आपके भक्त जैसे नारद आदि हैं। और हमारी आंखें आपका दर्शन करें और आपके भक्तों का दर्शन करें, कैसे आपके भक्त जो आपके प्रतिनिधि हैं नारद जैसे। श्री अजीव गोस्वामी लिखते हैं, भगवान कहते हैं कि अगर नारद ने आपको भक्त बनाया है तो नारद के पास जाओ और नारद जी से पूछ लो। तो भगवान को वो हाथ जोड़ के कहते हैं, आप हमारे को भक्ति जिसके द्वारा आपकी प्रीति प्राप्त हो, जैसे हम दामोदर अष्टक में पढ़ते हैं इन्हीं की प्रार्थना, कुबेरात मजौ बधमूर्ति यद्वत्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतो च। आपने दोनों कुबेर के बेटों को मुक्त करके और अपनी प्रेम भक्ति दे दी। भगवान ने कहा मैं उनको नहीं जानता, मेरे प्रिय भक्त नारद ने उनके ऊपर कृपा की थी इसलिए उनको वो भक्ति प्राप्त हुई। तो ये कहते हैं हमारे हमारी वाणी निरंतर आपके गुणों का वर्णन करें, आपके लीला रूप नाम का वर्णन करें। क्या वर्णन करें? हमारे को आप ये हमारे ऊपर क्या वर्णन करें, तब आप ये बात को ध्यान रखिए कि भगवान ने ये आशीर्वाद दिया और ये दोनों भाई चंपू में एक स्निग्ध कंठ हुआ एक मधु कंठ हुआ और दोनों कृष्ण की धारावाहिक कथा, दिन में नंद बाबा और गोपों को सुनाते हैं और रात में राधा रानी और अन्य गोपियों को सुनाते हैं। तो इन्होंने जो ये प्रार्थना की वो सार्थक हुई, भगवान को स्नेह और निम्रता के साथ जो प्रार्थना की जाती है, ये नव वर्ष है, ये प्रार्थना के शब्द इन दोनों भाइयों के हम उच्चारण करें और भगवान से यही आशीर्वाद मांगें, यही कृपा मांगें, तो निश्चित रूप से भगवान के प्रचार के कार्य को बड़े स्तर के ऊपर किया जा सकता है। जैसे ये दो भाई भगवान की कथा भगवान के अपने पार्षदों को सुनाने के अधिकारी बन गए। सो आगे लिखा है, हम आपके ही केवल सुंदर रूप का वर्णन करें, किसी योग कर्म ज्ञान आदि मार्ग के ऊपर हमारी वाणी कभी न जाए, केवल आपके चरणों का स्मरण करें और किसी का नहीं, हमारे दोनों कान आपके कथा को श्रवण में लगे रहें। इसी प्रकार से हमारे दोनों हाथ, जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, आपकी सेवा के कार्य करें, क्या सुने हम, हमको वो सब सुने। ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे की ये बात बड़ी अच्छी लिख रहे हैं। जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि भक्तों को भगवान की सृष्टि लीला भी उतनी प्रिय है जितनी रास लीला प्रिय है। हम ब्रह्मा जी की सृष्टि के विषय में भी सुनते रहे, कान फिर भी खुले होते हैं, कुछ भी कान के अंदर कहीं से आवाज जा सकता है, परंतु भगवान वाणी तो कम से कम हमारे बस में है, इसको तो आपकी सेवा में केवल लगाएं। ये भी बहुत अच्छी बात जीव गोस्वामी भी लिखते हैं कि कान खुले होते हैं, रास्ते में दूसरा आवाज भी कान में जा सकता है, परंतु हमारी वाणी तो केवल आपके गुण लीला नाम के अतिरिक्त और कुछ न कहे, क्योंकि आपका वर्णन बड़ा रसमय है और ये रसना है, ये जीभ हमारी, जीभ को रसना कहते हैं और रसना रस चाहती है, ये संसार का रस चाहती है, इसको समाप्त करके हम आपके गुण रूप नाम लीला के रस का रस आस्वादन करें। तो बोला हाथ से क्या किया जाए, क्या सेवा की जाए, बोला हाथ से भगवान के विग्रह का अर्चन करें, हाथ से मंदिर का मार्जन करें, भगवान की विशेष रूप से विग्रह की सेवा हाथ से की जाए, ये प्रार्थना कर रहे हैं। मंदिर का मार्जन हाथ से करें, चरणों से क्या करें, आपके तीर्थ यात्रा करें, आपके धाम का भ्रमण करें, और सिर से और हमारा सर, आप जो जगत में निवास करते हैं आपको प्रणाम करें। सर को अंतिम में क्यों लिखा है जीवा गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि सर सबसे महत्वपूर्ण, माथा सबसे मुख्य अंग है शरीर का, तो उसको कहते हैं अंत में, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है शरीर का माथा। और तब बार बार कहा गया है, बड़े आदर पूर्वक इस विश्व में आप निवास करते हैं, हम प्रणाम करें, क्योंकि भगवान सब कुछ है, क्या चीज है जो भगवान नहीं है। प्रणाम किसको करें, वैष्णव, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के ऊपर हजार वैष्णव को रोज प्रणाम करते थे, जगाई माधाई चेतना महाप्रभु के कृपा के उपरांत गंगा जी में स्नान करने वाले हर वैष्णव को प्रणाम करते थे। ये प्रणाम करना तो भगवान ने भगवत गीता के जहां चार सूत्री अपना प्रोग्राम बताया है, योजना बताई है, मनमना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो वहां कहा है, और मेरे सर से मैं आपके भक्तों का नमस्कार करता रहूं, प्रणाम करता रहूं, ये प्रणाम बहुत शक्तिशाली है। जब प्रणाम करते हैं तो सकल द कृष्ण प्रणाम हो, एक बार कृष्ण को प्रणाम करे, उसकी तुलना किसी अश्वमेध यज्ञ से करना पाखंड हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, पद्म पुराण लिखती है सकृत कृष्ण प्रणाम हो, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यज्ञ आदि करने वाला स्वर्ग भोग के वापस आता है, कृष्ण प्रणाम करने वाला कभी वापस नहीं लौटता है, तो हमारा सर सदा वैष्णो के चरणों में नमन करता रहे। शिरसा तु तस्यो भया लिंगम आनमेता, श्रीमद् भागवत के दसवें अध्याय के दसवें स्कंद के अस्सी अध्याय के चौथे श्लोक में लिखा है, शिरस तो तस्य उभय लिंगम आनमेता, असली वास्तविक सर वो है जो प्रणाम करता है भगवान को, जो चर अचर सब में विराजमान है, भगवान जो सब चर अचर में विराजमान है, उसको जो सर प्रणाम करता है वो वास्तव में सर है, नहीं तो ऐसे मुंडी सर को लेके घूमना अकड़ी हुई किसी काम की नहीं है। अब जीव गोस्वामी भाव लिखते हैं, क्योंकि ये सारी कथा हो रही है ब्रज में, ये तो गोकुल की लीला है, दामोदर लीला और नर कुबेर और मणिकर्ण के उद्धार की लीला, तो कहते हैं हम आदर पूर्वक ब्रजवासियों को प्रणाम करें। हम तो यहां से वापस जा रहे हैं, अब हम तो जाएंगे यहां से तो जाएंगे अपने कुबेर पिताजी के निवास में, ब्रजवासियों से दूर हो जाएंगे, परंतु ब्रजवासियों के प्रति हमारा आदर पूर्वक प्रणाम नित्य निरंतर स्वीकार किया जाए, ये हमारे ऊपर कृपा कीजिए। अब कहते हैं हमारे आंखों से हम दर्शन करें तो वैष्णव नारद जैसे ऋषियों का दर्शन करें, अथवा हमारी आंखें साक्षात आपका दर्शन करें, कैसा कि ठाकुर जी के रूप में आप मंदिर में विराजमान हैं, आपके मंदिर का दर्शन करें। ये आंखों का एक ही उद्देश्य है कि भगवान के रूप का दर्शन, कम से कम प्राचीन काल में वैष्णव 3 बार भगवान का दर्शन कम से कम करने का जाते थे, सुबह मंगला का दर्शन आरती मंद मंगला या दर्शन का, फिर मध्यान काल की राजभोग आरती का दर्शन और सायन आरती का दर्शन, त्रिकाल संध्या, ये त्रिकाल संध्या है, ये तीनों समय भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने जाना चाहिए। तो भगवान और भगवान के भक्तों का दर्शन, और भगवान के मंदिर में जाएंगे तो ये दोनों काम हो जाएंगे, भगवान का विग्रह का दर्शन होगा और उधर भगवान के सेवक भक्त होंगे, दोनों का दर्शन हो जाएगा। इसलिए ये जो दर्शन है और ये प्रणाम भी उधर ही करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, और ये सारे काम मंदिर में जाने से हो जाएंगे। इसलिए द्वापर युग में अर्चा विग्रह जो है नियमित पूजा का साधन था, परंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कली काल में इन मंदिर के निर्माण का आदेश छे गोस्वामी को देकर हमारे ऊपर उधार किया है कि ये सारी काम, ये वाणी, ये श्रवण, ये सुमरण, ये वंदन और ये प्रणाम, ये सब मंदिर में कर सकते हैं, इसलिए अधिक से अधिक मंदिरों में जाने का नियम बनाना चाहिए। तो यहां ये विशेष रूप से लिखा ऐसे है कि ये सब घर में देखना संभव नहीं है, भगवान को अपने घर में देखना संभव नहीं है। ऐसा वो नहीं कहते हैं कि भगवान हमारे घर में आप आ जाइए, ऐसा नहीं कह रहे, उसमें उनको डर लग रहा है कि इसके हम अधिकारी नहीं है। और जीव गोस्वामी पाद कहते हैं भगवान वैष्णव का स्पर्श करना और भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी और फूलों का सौरभ्य सोंगना, खुशबू को लेना, इत्र आदि अर्पण किया हुआ, ये भी इस श्लोक में समझना चाहिए। श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं विशेष रूप से लिखते हैं क्यों भक्तों का दर्शन करें आंखों से। सनातन गोस्वामी पाद का भाव है जो भक्त आपके नित्य सेवा में लगे हुए हैं, जो उनको अपने आप को अपने हृदय में धारण करते हैं, जो सालंग्राम का पूजन करते हैं नित्य, ये वैष्णव को सालंग्राम का पूजन करते हैं, तो वो सालंग्राम पूजन किया ब्रज के भक्त, तो भगवान सालंग्राम को अपने गली में गले में लटका के घूमते हैं, तो उनको दर्शन करने का मतलब भगवान उनके साथ ही है, तो भगवान का दर्शन करना है। अब सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं 6 प्रकार की भक्ति यहां बताई गई है, कीर्तन, श्रवण, पूजा, परिचर्या, परिचर्या का मतलब है अर्चन, और सुमरण और वंदन, और ये है साधन भक्ति। 2 और भक्ति जो नहीं यहां कही गई है, सख्य और आत्म निवेदन, वो असल में साध्य भक्ति है, वो साधन भक्ति नहीं है, वो जब साधन भक्ति करेंगे तो उस स्तर के ऊपर आएंगे। सामान्य रूप से ये दो प्रकार की भक्ति साधन में नहीं दिखती है, तो वो भी इसमें समझना चाहिए। असल में समझना चाहिए कि वो सुमरण आदि के अंतर्गत आ जाएगी। जब भाव के स्तर पे कोई आएगा, जैसे कर्म अर्पणम दास्यम, ये सब कीर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब सनातन गोस्वामी कहते हैं ये सारे अंग तो भक्ति के मुख्य हैं, परंतु सबसे मुख्य है कीर्तन। वो प्रार्थना करते हैं कि कीर्तन करने की हमारे को सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि मुख से जब कहते हैं तो सारी इंद्रियों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, तो सब इंद्रियां अपने आप दूसरे काम में लग जाएंगी। इसका अर्थ जो कीर्तन करेगा, और कीर्तन श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, कीर्तन प्रभुपाद जी ये भावार्थ में लिखते हैं, जहां सुखदेव महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं दूसरे स्कंद में, यद कीर्तनम यद सुमरणम यद वंदनम यद अर्चनम यद अहरणम यद श्रवणम। तो वहां लिखे हैं कि कीर्तन भगवान के, जैसे श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, नाम का कीर्तन, रूप का कीर्तन, सुंदर भगवान के रूप का कीर्तन, मुरली मुरली मनोहर, सिखी पुछम कटी तटे, सर के ऊपर मोर पंख धारण किया हुआ है, ऐसे सुंदर भगवान मुरली मनोहर के रूप का कीर्तन करना, भगवान के गुणों का कीर्तन करना, भक्तवत्सल भगवान है, भगवान के ब्रज की लीलाओं का कीर्तन करना, भगवान के नाम का कीर्तन सबसे मुख्य कीर्तन है। और प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं, गीता और भागवत के श्रवण का और बोलना भी कीर्तन है। तो कीर्तन के आचार्य जो सुखदेव गोस्वामी हैं, वो तो साक्षात बोल रहे हैं भागवत को, उसको कीर्तन कहा गया है। तो रोज भागवत की कथा का श्रवण करना भी अपने आप में कीर्तन है। और इस बात का प्रमाण देने के लिए सनातन गोस्वामी लिखते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण से नारद जी ने पूछा कि आप अपनी लीला को अब परिपूर्ण करके अपने धाम जा रहे हैं, तो भक्त आपको कहाँ मिलने के लिए आए, कहाँ आप भक्तों को प्राप्त हो सकते हो, तो भगवान ने जब कहा, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे न योगी ना निर्देशुवा, यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। यहां सनातन गोस्वामी लिखते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे, तो आप कहां होते हैं, यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त कीर्तन करते हैं वहां मैं नित्य नवीन रूप में प्रकट होता रहता हूं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, इसलिए सबसे मुख्य अंग और सबसे महत्वपूर्ण साधन है कीर्तन, क्योंकि ये रस को प्रकट करता है। कीर्तन अपने आप में एक अद्भुत रस की अनुभूति कराता है। इसलिए इस कीर्तन के ही विश्व में प्रचार करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य है। वो केवल संकीर्तन मुख्य कार्य को करने के लिए आए, और इस संकीर्तन के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमने पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भावना अमृत संघ का प्रचार किया मुख्य कीर्तन के द्वारा, मधुर भगवान के नाम का कीर्तन। इसने पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भक्ति को एक आंदोलन के रूप में स्थापित किया। दूसरा, इस कार्य को हमने सफल करने के लिए प्रसाद का वितरण किया। कहा, ये दो ही चीजों के द्वारा पूरे विश्व के अंदर कृष्ण भावना का मैंने प्रचार किया है। प्रभुपाद जी पिट्सबर्ग एयरपोर्ट से न्यू वृंदावन जाते हुए अपने शिष्यों को, जो उनको लेने आए थे, उनको कह रहे थे कि दो प्रकार, दो ही चीजों के द्वारा पूरे विश्व में हमने प्रचार किया है। एक मधुर भगवान के नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और दूसरा प्रसाद का वितरण। और फिर प्रभुपाद जी ने एक दिन ब्रह्मानंद जी को कहने लगे, ब्रह्मानंद पहले तो हमारे पास प्रसाद की भी व्यवस्था नहीं थी, एक सेब मिलता था, एक सेब के 15-20 टुकड़े करके सब भक्तों को टुकड़ा टुकड़ा देते थे, तब तो हम केवल उद्यान में बैठ के कीर्तन करते थे। तो ये कीर्तन कितना शक्तिशाली है, ये हमारा प्राण होना चाहिए, ये हमारा जीवन होना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और ये कीर्तन करना, मंदिर में बैठ के करना, गली गली में करना, महाप्रभु तो हो स्वयं 4 साल पूरे दक्षिण भारत से लेकर मुंबई तक और फिर वृंदावन तक वो गली गली में शहर शहर में गाया है भगवान के नाम का कीर्तन। और ये कीर्तन सबसे शक्तिशाली साधन है। और सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं कि भगवान के भक्तों का दर्शन और भगवान के विग्रह का दर्शन साक्षात भगवान के दर्शन के समान है। एक महाभागवत में और एक कनिष्ठ भक्त में, नए भक्त में अंतर क्या है? महाभागवत भगवान के विग्रह को साक्षात श्री कृष्ण मानता है और जानता है, नया भक्त उसको मूर्ति मानता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, राधा रास बिहारी बात करते हैं कोई इनकी भाषा समझे। कृष्ण बलराम मंदिर में कृष्ण बलराम की स्थापना करके कहने लगे भक्तों को, अब आ गए हैं भगवान श्री कृष्ण बलराम हमारे स्वामी, आपकी कोई समस्या है इनको जाकर बताओ, ये सबकी समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रभुपाद जी तो विग्रह से बात करते थे जैसे साक्षात श्री कृष्ण से करते हैं। और ये विग्रह ऐसे शुद्ध भक्तों के लिए विग्रह नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। एक साक्षी गोपाल वृंदावन से चला गया दक्षिण भारत में, जो आज पूजित है ओडिशा में, तो भगवान की मूर्ति उनके लिए मूर्ति है जो अभी तक मूर्ति बने हुए हैं, जो भक्त बने हैं उनके लिए तो भगवान का विग्रह साक्षात भगवान है। और भगवान के भक्त वो तो भगवान को मिलाने वाले हैं, उनका दर्शन हो जाए तो भगवान मिलना निश्चित है। भक्त का दर्शन हो गया तो भगवान मिलेगा, आपको यशोदा मैया का दर्शन हुआ तो उसकी गोद में श्री कृष्ण मिलेगा, क्योंकि कृष्ण उसकी गोद में आएगा ही आएगा। इसलिए ऐसे भक्तों का वर्णन बहुत विशाल, इसलिए एक भागवत का विषय है ईशानु कथा। ईश का मतलब भगवान और अनुगामी का मतलब उसके भक्त, इन दोनों की कथा। हृदय के अंदर जो अनादि काल से कर्म की वासनाएं हैं उनको धो के साफ कर देते हैं, हृदय बिल्कुल उज्जवल हो जाता है। और हृदय को धोने के बाद इस हृदय के अंदर जिसकी कथा सुनते हैं वो आके हृदय में प्रकट हो जाता है। कीर्तन, कथा और कीर्तन ये हृदय को द्रवित कर देते हैं, पिघला देते हैं। हृदय के अंदर जो कई जन्मों के संस्कारों के कारण भोग की मूर्तियां बनी हुई है, धन पुत्र परिवार की जो मूर्तियां बनी हुई है, मान प्रतिष्ठा की जो आदतें बनी हुई है, वो भगवान के कथा और कीर्तन में पिघल जाती है, हृदय द्रवित हो जाता है। द्रवित होने का मतलब पिघल जाना। और जब हृदय पिघलता है, पिघलता कब है? वो तो भाव के स्तर पे पिघलता है, भाव भक्ति में हृदय पिघलता है, वहां चित्त मर्षण शब्द है। भाव भक्ति का मतलब चित्त का मर्षण हो गया, चित्त पिघल गया। जब चित्त पिघल गया तो ये सारी माया की मूर्तियां पिघल जाती और उसकी जगह पे भगवान श्री राधा गोविंद जी का सुंदर स्वरूप हृदय में विराजमान हो जाता है। तब उसके चरणों का मन निरंतर स्मरण करेगा जब हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले कथा कीर्तन करना पड़ेगा। कीर्तन करेंगे तो सुनेंगे कानों से, तो कथा भी हो गई, कीर्तन भी हो गया। कीर्तन में तो दोनों अंग हो जाते हैं, श्रवण भी हो जाता है और मुख से वाणी का कीर्तन भी हो जाता है। तो कीर्तन बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि भगवान का दर्शन, सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, क्योंकि भगवान का दर्शन भक्ति में पूर्णता की का परिचय है, इसलिए दर्शन इस श्लोक में रखा गया है अंतिम लाइन में। और जो बीच में है वो हरेक की जिसमें रुचि है उसमें लगी, कोई श्रवण में रुचि रखता है, कोई कीर्तन में रुचि रखता है, कोई सुमरण में रुचि रखता है, कोई सेवा में रुचि रखता है, तो वो रुचि के अनुसार अपना अंग को अपना ले, परंतु दर्शन अंत में रखा है जो लक्ष्य है भक्ति का। और श्री सुखदेव गोस्वामी इसके बाद कहते हैं इत्थम संकीर्तितस्ताभ्याम, इस प्रकार जब उन्होंने भगवान का सम्यक कीर्तन किया, वो जो प्रार्थना कर रहे थे वो वंदना थी, लेकिन उसमें भगवान की गुण रूप लीला गा रहे थे तो वो कीर्तन हो गया। भगवान गोकुलेश्वर, भगवान जो इस वक्त गोकुल में विराजमान थे, गोकुल के ईश्वर थे, कैसे थे भगवान? दामना च ओल खुले बधा, वो अभी तक रस्सी से बंधे हुए थे। आप देखिए प्रार्थना जिसकी कर रहे हैं वो भगवान कैसे हैं, रस्सी से बंधे हुए हैं उखल के अंदर। प्रसन्न आहा गुह्यको, बहुत प्रसन्न हो गए। गुह्यको, गुह्यक कहते हैं कुबेर को, और उसके पुत्र को कहते हैं गुह्यको, जैसे कुंती कौनते हो, तो यहां दो है इसलिए गुह्यको। तो कुबेर के दोनों पुत्रों के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। कौन भगवान? गोकुल ईश्वर भगवान उखल में बंधे बंधे प्रसन्न हो गए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं संकीर्तित, इसका मतलब पूर्ण रूप से भगवान की महिमा गाई। भगवान रस्सी से बंधे हुए थे, बोला बंधे थे रस्सी से नहीं। हाँ, लिखा ये है भगवान प्रसन्न होके, भगवान रस्सी से नहीं बंधे हुए थे, प्रेम से बंधे हुए थे। भगवान प्रेम सी माता के प्रेम की रस्सी से बांधे हुए थे। और प्रसन्न का मतलब भगवान मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? बोला वो देवनु देवता माया से बंधे हुए थे और भगवान प्रेम से बंधे हुए थे। देवता थे माया से बंधे हुए, ऐसे हम सब माया से बंधे हुए हैं संसार में। ये शरीर हमारा है तो ये दिया ही प्रकृति ने, ये माया का दिया हुआ शरीर है। इसलिए जो यहां दोनों भाई प्रार्थना कर रहे हैं, ये हमारे जीवन की निरंतर नित्य और शाश्वत प्रार्थना होनी चाहिए। भगवान कहते हैं माता यशोदा मेरे को प्रेम करने के बजाय डांट दिया और बांध दिया, फिर भी मैं इस गोकुल में गोकुल से प्रेम करता हूं, मैं यहीं रहूंगा। प्रभुपाद जी एक दिन उदाहरण दे रहे थे, छोटे बच्चे को माता जब मारती है तो माता फिर तो बच्चा जाके फिर माता जी गोद में लपटता है, फिर मारती है तो भी माता जी गोद में लपटता है। इसको कहते हैं प्रेम। भगवान दंडित भी करे, हमारे को सुधारने के लिए करता है। हमको भगवान का शरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में बड़ी संकट आते हैं, परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, लेकिन भगवान का चरण नहीं छोड़ा। प्रेम वो है, किसी भी स्थिति में भगवान का चरण नहीं छोड़ा जाता है। और जीव गोस्वामी पाद कहते हैं हंसते हुए भगवान ने दोनों की ओर देखा और मुस्कुरा के कहने लगे अब मुक्त होए चले जाओ। हरे कृष्णा। अब आगे क्या हुआ वो भी पढ़ लेते हैं एक श्लोक में। नारद की कृपा से इन दोनों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। नारद की कृपा से ये सौभाग्य, इसका मतलब भक्त की कृपा से भगवान मिलते हैं, कि ये नारद की कृपा है आपको ये मिला है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, श्री भगवान वाच ज्ञातुम मम पूर्वैतद् ऋषिणा करुणात्मना यच्छ्री मदान्धयो रवागभीर विभ्रंसो अनुग्रह कृतः। भगवान कह रहे हैं ज्ञातुम मम पूर्वैतद्, मैं जानता हूं पहले क्या हुआ, मैं ये जानता हूं पहले क्या हुआ है। ऋषिणा करुणा आत्मना, आपके ऊपर देवऋषि नारद की कृपा हुई है। इसका अर्थ है जब तक किसी भक्त की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान हमारे विषय में जानेंगे ही नहीं हम कहां पड़े। इसके लिए भक्तों का संग, भक्तों की सेवा, भक्तों का कृपा प्राप्त करना, करुणा प्राप्त करना अति आवश्यक है। और भक्त बड़े दयालु होते हैं। ऋषिणा देव ऋषिणा नारदना करुणात्मना यत श्री मदांधयोर वाग भी, आपको तो धन के, धन का बहुत बड़ा नशा चढ़ा हुआ था। नारद जी ने कहा है चार बड़े नशे होते हैं, जब इन्होंने मलक नंद नंद मणिग्रीव और नल कुबेर को देखा नारियों के संग नंगा नहाते हुए, तो का चार कृपा प्रकार के नशे हैं, सुंदर रूप का नशा, उच्च कुल में जन्म का नशा, उच्च विद्या का नशा और धन का नशा। इन चारों में धन का नशा सबसे बड़ा भारी नशा है। विभ्रंसो अनुग्रह कृत, और उस मद के अंध के कारण आपका पतन हुआ। विभ्रंसो, आप स्वर्ग से पतन होके नीचे आए परंतु पेड़ बन गए, परंतु अनुग्रह कृत, ये आपके ऊपर नारद जी ने बड़ा अनुग्रह किया। ये भी नारद जी का अनुग्रह था। तो नारद, इसका मतलब संत कभी भी किसी के ऊपर कुपित नहीं होते, उनके श्राप में भी अनुग्रह होता है। अब साधु की महिमा कह रहे हैं, भक्त की महिमा कह रहे हैं, ऐसे प्रार्थना कौन कर सकता है जिसके ऊपर किसी भक्त की कृपा हुई है। साधु नाम समचित्ता नाम, ये जो साधु होते हैं ना, ये भगवान के प्यारे भक्त होते हैं ना, ये सब समचित्त होते हैं। समचित्त होते हैं का मतलब इनके हृदय में भगवान विराजमान होता है और ये सबके ऊपर करुणा कृपा करते हैं। साधूनाम समचित्तानाम सूत्राम मतक कीर्तात्मनाम दर्शनाम नो भवेद बंध पुंशो क्षणो स्वितो यथा। साधूनाम, भगवान के जो भक्त हैं, जो साधु हैं, समचित्तानाम, वो सबके साथ सम दर्शन रखते हैं, किसी को पराया नहीं मानते हैं, सबके साथ सबका भला करते हैं। सूत्राम, अधिक और पूर्ण रूप से मत कृत आत्मनाम, वो कौन है साधु, जो जो मेरे भक्त है और मेरी सेवा में पूर्ण रूप से लगे हैं, मेरे शरण में है, उसको कहते हैं मत कृत आत्मनाम। मेरे ऊपर जिन्होंने शरणागत, मेरे चरणों का शरण ले लिया है और मेरी सेवा में लगा है, उनका अगर दर्शन हो जाए, दर्शनान न भवेत बंधना, एक बार साधु का दर्शन हो जाए तो फिर कोई बंधन नहीं पड़ेगा, सारे बंधन से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। अक्षणों, आंख से अगर देख ले उनको, सभी तो यथा, जैसे सूर्य को कोई सामने से देखे तो अंधकार में रह नहीं सकता, ऐसे साधु को देख ले तो माया में फिर रह नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर सूर्य के कोई सामने खड़ा है तो अंधकार में नहीं रह सकता, तो उसकी आंखों के सामने अंधकार नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगर कोई भगवान के भक्त साधु उसके सामने आ जाए तो और कौन साधु कैसा होना चाहिए, जो भगवत चरणारविंद के शरणागत हो चुका है और भगवान के कथा कीर्तन की सेवा में संलग्न है, तो निश्चित रूप से वो भव बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कोए, लव मातर साधु संग सर्व सिद्धि होए। यही सब शास्त्र कहते हैं, लव मातर साधु संग भी हो जाए तो बड़ा उद्धार हमारा हो जाएगा। कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि नारद का आपने तो अपमान किया, नंगे खड़े थे उसके सामने, ये तो अपराध हो गया, उन्होंने कृपा कैसे की? तो उसका उत्तर श्लोक में दिया गया है कि साधु समचित होते हैं, साधु अपराध को नहीं देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण पूतना के स्तन के ऊपर लगाए हुए काट को अकालकूट विष को नहीं देखा, उसके स्तन पलाने वाले माता के भाव को देख लिया। इसको कहते हैं साधु गुण ग्राही होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो जो उनके पास पहले कथा सुनने आते थे या कीर्तन में आते थे, वो कोई वैष्णव ब्राह्मण तिलक लगा के धोती पहन के स्नान करके नहीं आते थे। वो मदरा की बोतल हाथ में लिए हुए, लड़की के कंधे के ऊपर हाथ रखे हुए और नशे में धुत हिप्पी आते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनके अंदर एक गुण को देखा कि इनको कीर्तन सुनने में और भगवान के नाम को, भगवान की सेवा करने में थोड़ी रुचि है, तो उनके अंदर जो सद्गुण देखा उसी को, छोटी सी चिंगारी को प्रभुपाद ने हवा देके इतना महान ज्वाला प्रकट की कि उनके सारे अवगुण उस आग में जल गए और वो कुंदन बन के, आग से सोने से कुंदन बन के बाहर चमक के साधु बन के निकल गए। तो साधु दोष नहीं देखता किसी में, ऐसे दोष भगवान देखे तो कौन भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो सकता? ऐसे भगवान के भक्त अगर दोष देखें तो उद्धार कौन करेगा? भगवान पतित पावन है, जो पतित हैं उन्हीं का उद्धार करते हैं, भगवान पतितों के ऊपर उद्धार करते हैं, और साधु भी पतित पावन है। चेतन्य महाप्रभु, देखो श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना है तो भगवान श्री चेतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त और कोई ये प्रेम नहीं दे सकता। ये कृष्ण प्रेम एकमात्र चेतन्य महाप्रभु दे सकता है, लेकिन चेतन्य महाप्रभु ये कृष्ण प्रेम तब देता है जब नित्यानंद प्रभु उसका सिफारिश करते हैं, अनुमोदन करते हैं कि ये बड़ा अच्छा भक्त है, और नित्यानंद प्रभु केवल उसका अनुमोदन करते हैं, उसी की सिफारिश करते हैं जो पतितों का उद्धार करता है, जो जगाई मधाई जैसे दुष्टों के ऊपर करुणा कृपा करता है, स्वयं दुख तकलीफ पीड़ा सहकर भी दूसरों के भले के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करता है। प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे जगहों पे कीर्तन करने के लगे, हेपियों के बीच में कीर्तन करने लगे और कीर्तन करने के लिए गए जहां कोई वैष्णव सोच भी नहीं सकता है जाने का। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा की मूर्ति शिला प्रभुपाद जी बन गए, और यही तो गुरु तत्व है, गुरु की कृपा नित्यानंद से आती है, और तब इतने सारे विश्व के अंदर इतना बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन स्थापित किया जिसके अंतर्गत आज हमको अपने घरों में बैठे हुए भगवान के इस वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत के श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी समचित्त, समचित्त का अर्थ है, एक है समचित्त का मतलब उनका चित्त सम्यक रूप से मुझ में आविष्ट है, वो मच्चित्ता है, समचित्ता है, वो मच्चित्ता है, जो मच्चित्ता होगा वो समचित्ता होगा। ये मच्चित्ता हमारे भगवद गीता के चतुर्श्लोक में आते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुषंति चरमंति च। ऐसा साधु जिसका चित्त मुझ में रमण करता है, और इसका तो हम परिभाषा कभी करते हैं तो लगता है जिसके चित्त में मैं विराजमान हूं, जिसके हृदय में मैं विराजमान हूं, भगवान कहते हैं ऐसा भक्त जिसके हृदय में मैं हूं। इसलिए हमारे आचार्य ने गाया, कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पार, अमी तो कंगाल धाये तब पाछे पाछे, कृष्ण तुम्हारा है। तो ऐसे भक्त जिनके हृदय में समचित्तम, जिनका चित्त पूर्ण रूप से कृष्ण में तलीन है, अथवा इसका अर्थ है जो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसे भक्तों का संग मिल जाए तो निश्चित रूप से भव बंधन खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाता है? वो भक्ति देते हैं, वो भक्ति रूपी नौका ले देते हैं जो भव सागर पार करती है। ये नौका वो नहीं है जिसके ऊपर चढ़ना चाहिए, ये वो नौका है भगवान के चरण कमलों की, जिसका ध्यान करने से ये भव सागर सूख के गाय के बछड़े के खुर में जितना पानी है खड्डे में इतना छोटा हो जाता है, और बच्चा भी उसके ऊपर से फलांग के चला जाता है। अब एक बात बड़ी अच्छी लिख रहे हैं चक्रवर्ती पाद, उल्लू को सूरज निकलता है तब भी अंधेरा रहता है, ऐसे असुर नारद से मिलते हैं तब भी उनको कोई लाभ नहीं होता, कंस के पास भी नारद गया था लाभ नहीं हुआ, वो फिर भी देवकी के बच्चों को मारने लगा। तो यहां लिखा है ऐसों का भव बंध नहीं टूटता है जो संतों से मिलने के बाद ही, क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि असुरी भाव से है। तात्पर्य तो और भी अधिक सुंदर सुंदर हैं, भगवान ने उनको कृपा करके बोल दिया, आप जाइए। तदगच्छतम मत परमो नल कुबेरो साधनम संजातो मई भावो एवाम इप्सितः परमो भवा। मेरी भाव भक्ति, मेरी प्रेम भक्ति आपको प्राप्त हो, इसका मतलब जो उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान ने स्वीकार की और उनको प्रेम भक्ति का प्रसाद दिया, और ये दोनों नल कुबेर और मणिग्रीव स्निग्ध कंठा कंठ और मधुर कंठ होकर श्री भगवान श्री कृष्ण की लीला जीव गोस्वामी पाद के चंपू के ग्रंथ में, गोपाल चंपू में, ये कृष्ण लीला को बड़े मधुर आज भी गा रहे हैं भगवान के धाम में, इस लीला का वर्णन कर रहे हैं। सो भगवत धाम जाके भगवान के कीर्तन कथा करने के लिए नव वर्ष में हम साधु का संग करें, भगवान के मंदिर का दर्शन करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें और भागवत का श्रवण करें और प्रणाम करें। इन सब में सबसे मुख्य है कीर्तन, और वो कीर्तन किसी शुद्ध भक्त के मुख से सुनने से हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा और इस भक्ति के मार्ग में हम निश्चित रूप से नव वर्ष में अग्रसर होके अपना कल्याण करेंगे। इन शब्दों के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा
जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
धन्यवाद।
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी। भाई बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से आपने इसके बारे में बताया। तो प्रभु जी क्वेश्चंस अभी यूट्यूब पे भी आएंगे। आई थिंक वसुदेव प्रभु आप पूछना चाह रहे कुछ क्वेश्चन
जी। वसुदेव क्या कृष्ण प्रश्न क्या है
पूछ रहे हैं? वो वसुदेव जी उनको म्यूट ऑफ करो।
हाँ जी पूछिए पूछिए प्रभु जी क्या है। हरे कृष्णा क्या प्रश्न है प्रभु जी?
वसुदेव जी उनको प्रश्न पूछ रहे हैं क्या प्रभु जी? एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज। वसुदेव जी उनको प्रश्न पूछ रहे हैं क्या?
नहीं नहीं कोई क्वेश्चन।
हरे कृष्ण
प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है।
हाँ जी
प्रभु जी। सर इस श्लोक में लिखा गया है कि अब से हम लोग सारे आपने बताया जिस तरह श्रवण कीर्तन दर्शन कीर्तन मुख्य, तो ये मतलब बार बार सुनते हैं बोलते हैं पर सोचते भी हैं अब से, होता नहीं है, फिर से कुछ समय के बाद आके फिर बैक टू स्क्वायर वन, फिर उन्हीं अर्थों में जूझना आरंभ कर देते हैं। तो कैसे दृढ़ निश्चित हो कि हम करें इसको, जो जो लिखा है वो करें एक्चुअली।
उत्साह निश्चय धैर्य, पहले तो उत्साह होना चाहिए, फिर निश्चय और धैर्य, तीन ये हम पढ़ते हैं लेकिन इसी के ऊपर भी अभ्यास नहीं करते हैं। उसका एक मुख्य कारण यह है कि इंस्पायरिंग भक्तों के संघ की आवश्यकता है। संकीर्तन प्रायः दुर्लभ हो चुका है। हमारी अपनी संस्था में भी जो संकीर्तन जिसका नाम था वो आस्ते आस्ते मंदिरों के अंदर तक सीमित हो गया है, वो भी एक फॉर्मेलिटी जैसा हो गया है। उत्साहजनक जो है वातावरण, बाहर जाके संकीर्तन जब तक नहीं करेंगे तब तक हम शरीर के स्तर से ऊपर भी नहीं उठ पाते हैं, तब तक हम अपने उपाधियों में अटके रहते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद ने जो संकीर्तन बाहर के देशों में करने के बाद भारत में आके भी उन भक्तों के द्वारा, पुराने भक्तों को अगर आप पूछेंगे 70s के भक्तों को, कहते 2 hours कीर्तन कीप ए माया अवे, टू आवर कीर्तन ए डे कीप्स माया अवे, 2 घंटे कीर्तन माया को दूर रखती है। अब आप बताइए कि कितने मंदिरों में 2 घंटे कीर्तन, या बाहर कितने 2 घंटे कीर्तन करने जाते हैं पहले भक्तों, अभी बंद तब मंदिर नहीं थे, बड़े मंदिरों की सेवा का इतना ज्यादा भार नहीं था, तो भक्त 9 बजे प्रसाद लेके पुस्तक लेके रोज चले जाते थे कीर्तन करने, चाहे 4 भक्त होते थे 2 कीर्तन करते थे 2 पुस्तक वितरण करते थे, तो ये शाम को 5 बजे दोबारे प्रसाद के समय पहुंचते थे, कोई 6 बजे आता था। ये जो प्रक्रिया थी ये आस्ते आस्ते बहुत धीमी पड़ गई, और ये एक उत्साह बना रहा था जिसमें, क्योंकि बाहर जाते हैं लोग, जब हमसे पुस्तक लेते हैं कीर्तन से 10 में से 1 लोग प्रभावित होता है, तो वो लोग हमारे पास आता भी है। और अब जो है, अब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस वक्त प्रायः जितने भक्त अपनी कंफर्ट जोन में रह के ही प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये 7 गुण के स्तर के ऊपर भक्ति हो जाती है। बड़े कंफर्टेबल हैं, इकट्ठे होते हैं, कीर्तन होता है, प्रवचन होता है, फीस्ट हो जाता है, आए दिन फीस्ट भी हो जाएगा, तो बस यहाँ तक हम संतुष्ट हो गए। होना तो ये चाहिए कि कम से कम सप्ताह में 1 दिन 2-4 भक्तों को लेके ऐसे गांव में चला जाना चाहिए जहाँ आप कभी गए नहीं है, जाके कीर्तन करके देखो, और कुछ प्रसाद ले जाओ और उधर वितरण करके देखो, 2 पुस्तक ले जाके देखो, फिर आपको पता लगेगा कि आप जो भक्ति कर रहे हैं उसका प्रभाव कहाँ कहाँ कैसे पड़ सकता है, नए स्थान के ऊपर भी। तो कम से कम अब ऐसी हम कांग्रीगेशन हो गई है कि हमारे पास इतना समय है नहीं, फिर भी लोगों से 2-2 घंटे दान में ले लो सप्ताह में, और 4-4 लोगों को अलग अलग गांव में भेज दो, अलग अलग जगहों पे भेज दो, पूरे विश्व के अंदर। अब अभी विश्व को क्या, आपके 100 किलोमीटर में इतने गांव हैं जहां कृष्ण भावना का संदेश पहुंचा ही नहीं, तो 2-2 घंटे सप्ताह में किसी से दान ले लो और उनको कुछ पुस्तक और मृदंग खड़ताल देकर किसी नई जगह भेजो कीर्तन करने के लिए। तभी श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी, गांव गांव में, नगर नगर में मेरे नाम का कीर्तन होगा, ये सार्थक होगी। ये काम हमको कभी न कभी बड़ी उत्साह के साथ करना चाहिए। ये कोरोना ने हमको करुणा करना अगर सिखाया है तो ये संकीर्तन की करुणा निश्चित रूप से करनी चाहिए। लोगों कहो कि आपको पैसा नहीं चाहिए, 2 घंटे दे दो सप्ताह में और ये पुस्तक लो और किसी गांव में चले जाओ, और फिर नेक्स्ट वीक वो 5-6 सप्ताह अगर एक गांव में जाएंगे तो वहां छोटा सा आपका प्रचार केंद्र चालू हो जाएगा। ऐसे गांव गांव में जाने की जरूरत है, कॉलेज कॉलेज में जाने की जरूरत है, या स्कूल स्कूल में जाने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। ये कीर्तन प्रार्थना करते हैं तो ये करना भी चाहिए, तो कीर्तन कहाँ करेंगे, मंदिर में तो हो ही रहा है, लेकिन ये भक्तों को कैसे भी ये जो ये बाहर कार्य करना शुरू करेंगे। और एक छोटा सा गौर नेता है का हमने तो देखा है कि छोटा गौर नेता है सर के ऊपर उठा के जैसे पद यात्रा वाले जाते हैं, ऐसे एक छोटा सा गौर नेता है, भगवान इतने बड़े दयालु है, जहाँ जाएंगे वो अपनी कृपा करेंगे उन लोगों को। तो दो छोटे से छोटा सा एक गौर नेता है का ऐसा अल्टर बनाए सर के ऊपर उठाएं, ऐसे चार पांच हमारे पास पड़े, जितने जितने टीमें हैं उतना होना चाहिए और सब निकल जाए, कम से कम सप्ताह में एक एक दिन तो निकल जाए। इस तरीके से ये बहुत बड़े स्तर के ऊपर प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। और गांव गांव में प्रचार करके देखोगे तो आपको अन्न इतना आएगा कि आपके मंदिर में प्रसाद 24 घंटा चलता रहेगा, क्योंकि लोग वहां धन वो अपने खेत का अन्न आपको भर के दे देंगे। इस प्रकार से आप देखिए, कभी कभी गरीब गौ पुराने जो मंदिर हैं वो चलते ऐसे हैं कि पुराने लोग अपने आप अन्न दान सब कुछ दे के जाते हैं। तो गांव गांव में कैसे प्रचार किया जाए इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। केवल एक पदयात्रा है जो ऐसे गांव से घूम के जाती है, वो तो 10 साल में एक बार भी नहीं आती है। तो एक अभ्यास एक प्रयास करना चाहिए ग्रामीण जगहों पे, खेतों में जो लोग रहते हैं वहाँ प्रयास करो, ताकि हमारे पास इतना प्रसाद के लिए अन्न का भंडार हो कि प्रसाद और कीर्तन दोनों बहुत शक्तिशाली चलते रहे। प्रभुपाद जी की तो ये इच्छा थी कि गांव गांव नगर नगर में बैलगाड़ियों में प्रचार हो, लेकिन दोनों स्तर पे, एक स्तर है कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रचार करना, वो एलाइट कम्युनिटी को प्रचार करने की आवश्यकता है, और एक जनरल मासेस में जाने की जरूरत है। ये दोनों जगहें अभी तक बेसिकली प्राया वैकंट पड़ी है। मिडिल क्लास में हम तो कंफर्ट जोन में इतने हैं कि मतलब इतने हमारी कांग्रीगेशन है, हमारा काम हो रहा है, हमारे को इसको कहना लो लाइंग फ्रूट पे हम सर्वाइव कर रहे हैं। हम प्रयास करके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। हरे कृष्ण।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैसे प्रभु जी, इस साल हमारी योजना में विलेज प्रीचिंग और स्लम एरिया प्रीचिंग, इसके बारे में हम ऑलरेडी कुछ प्लान कर रहे थे, तो आपके आशीर्वाद स्वरूप ये हमें और पक्का स्टैंप लग गया है कि हम बड़े उत्साह के साथ इस साल विशेष रूप से
नहीं सेवा कर सकते। लोगों से दो दो घंटे का टाइम लीजिए और गौर नेता का ऐसा एक अल्टर छोटा बना लीजिए जो साथ ले जाए, चाहे तो पोर्टेबल गाड़ी भी बन सकती है, जो जहां जाए गाड़ी में अपनी कार में ले जाए, उधर जाके छोटा रथ बन जाएगा, ऐसे पोर्टेबल बन जाता है, कई जगह पे हमने देखा हुआ है। और जो ऐसे प्रचार करते हैं उनके पास कोई चीज की कमी नहीं रहती, उन लोगों से कुछ मांगे, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, पुस्तक ले जाइए, कुछ अन्न ले लें, बोरी में दे दें, वो भी बहुत है, और वो लोग दे भी देंगे, आवश्यकता है। और फिर मैन पावर आपके पास बहुत आ जाएगी, जब वो इतना दूरी पे नहीं, आप मानो के 25-20 किलोमीटर का एरिया रख लें कि हमको पहले इतनी एरिया में काम करना है, तो वो लोग जब भी आपका उत्सव है दिन में आएंगे काम करके शाम को चले जाएंगे, आपका मैन पावर का भी उसमें से बहुत बड़ा सुविधा हो जाएगी। एक एक डायामीटर बनाने के, इस डायामीटर में हमको प्रचार शुरू करना है। प्रभुपाद जी ने दोनों ये प्रचार की प्रेरणा दी थी। सर्व दामोदर महाराज को कॉलेज यूनिवर्सिटी में बड़े पढ़े लिखे पहाड़े विज्ञानियों को प्रचार करने के लिए कहा, और ग्लोकनाथ महाराज को बैलगाड़ी से गांव गांव में प्रचार करने को कहा। तो ये दोनों तरफ से प्रचार का जो है, क्योंकि मास चलते हैं साइंस विज्ञानियों के मार्गदर्शन में, तो विज्ञानी भक्त बन जाए मास दोनों, ये बीच वाले तो बेचारे काम चला रहे हैं, लेकिन ये दो जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैन पावर है और एक सबको मूवर और शेकर है। हरे कृष्ण।
ठीक है भाई,
धन्यवाद।
थैंक यू सो मच जी। भाई क्वेश्चन YouTube पे भी आया है, अब प्लीज
बोलिए,
पूछ ले भाई। भाई दो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि हमें किसी ने बताया है कि एकादशी पर कुट्टू या संवर्क आदि नहीं खाना चाहिए, केवल फल इत्यादि खाना चाहिए।
एकादशी में कुछ भी नहीं खाना चाहिए,
निवेदन कर,
एकादशी में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ले असल में जो जो एकादशी रखते हैं उनको तो पहले निराहार, नंबर वन है निराहार, नंबर टू है जल आहार, पहले निर्जल है, दूसरे नंबर पे है जल पीना, तीसरे नंबर पे है फल आहार, इसके बाद एकादशी नहीं है, प्रचार के लिए फिर कुछ भी खा के प्रचार करते हो तो ठीक है, लेकिन प्रचार नहीं करते हो और कूटू खाते हो तो कूटे जाओगे। प्रचार के लिए प्रभुपाद ने कहा कुछ खाओ, खाने की आवश्यकता है कि प्रचार करते हो तो, क्योंकि केवल निराहार रहेंगे तो प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान की सेवा में लगने के लिए, वैसे ये कुछ नए बातें हैं कूटा। देखो हमारी एक परंपरा चल रही है साधु समाज में, आज तक कूटू चलता है, और उसमें कई साधु समाज में कूटू को एकादशी का फलाहारी माना जाता है, इसलिए उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पेट भरने के लिए नहीं, स्वाद के लिए अब उसका डोसा भी बनाओ और कटलेट भी बनाओ और उसका पिज्जा भी बनाओ, तो फिर आपका उद्देश्य एकादशी का रह नहीं गया। हमने तो एकादशी का फीस्ट इतना बड़ा कर दिया है कि सामान्य दिनों से एकादशी को ज्यादा खा जाते। एक बार लेना चाहिए, वो फल पे रह जाए तो सबसे अच्छा है, लेकिन रहा नहीं जाता है क्योंकि एक वातावरण ऐसा बन गया है। फिर भी हमने साधु समाज में देखा है एक टाइम ज्यादा से ज्यादा ले लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन कूटू लेने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या है कि कूटू के साथ कभी कभी गेहूं के दाने मिक्स हो जाते हैं, क्यों खेत के अंदर, इसलिए कभी कभी सावधान होते हैं कि उसमें अन्न आ गया है। कूटू अपने आप में अन्न नहीं है, लेकिन कूटू में दाने चावल गेहूं के हो जाते हैं कभी कभार, इसलिए लोग साथ, जैसे हल्दी है, ऐसे हल्दी कच्ची में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पिसी हुई हल्दी में आटा वाटा मिक्स होता है, इसलिए नहीं डालते। तो ये तो सावधानी वाली बातें हैं, और आपको मिल जाए तो जो भी एकादशी में परंपरागत चलता है उसको खाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्रचार करो, खाओ तो प्रचार करो, नहीं तो मत खाओ। चूल्हा जलाना ही नहीं चाहिए, सबसे अच्छा तो ये है एकादशी को चूल्हा बंद। हरे कृष्णा,
धन्यवाद जी, बहुत अच्छा बताया भाई जी। प्रचार नहीं करेंगे, कूटू खाएंगे तो कूटे जाएंगे भाई जी, बहुत अच्छा बताया।
केवल कूटू के बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी बना के टिकियां खाते हैं और पकोड़े, साबू कूटू के पकोड़े खाते हैं तो पक जाएंगे। और क्या प्रश्न है
जी? जी एक और प्रश्न है भाई, ये हमारे टेंपल के वाइस प्रेसिडेंट परमात्मा चतुर्गुरु का प्रश्न है भाई। वो पूछ रहे हैं कि हाउ टू मैनेज बिटवीन बेसिक नेचर ऑफ साधु एंड मैनेजमेंट, मीन समाचित एंड जस्टिफाइड डिस्क्रिमिनेशन और साधु, उसके बारे में कुछ पूछ रहे हैं भाई।
साधु तो हमारी हमारा स्वरूप है, साधु तो का मतलब है सेवा, साधन करना, जो साधन करता है वो साधु है, वो हमारी सेवा, वो हमारा स्वरूप है। और जो मैनेजमेंट है ये हमारा कर्तव्य है, जो हमारे हमारे को दिया गया है, ये हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। तो एक है प्रिस्क्राइब ड्यूटी और एक है हमारा स्वरूप, तो स्वरूप को तो हम छोड़ नहीं सकते, और प्रिस्क्राइब ड्यूटी तो हमको करनी ही चाहिए। हम प्रिस्क्राइब ड्यूटी कैसे करें, हमारा कर्तव्य जो मैनेजमेंट का वो कैसे करें जिसमें हम बंधन में न पड़े। ये पहले 6 अध्याय गीता के अंदर 2 ही बातें हैं, कर्तव्य कर्म, सब कर्म सबको करना पड़ेगा, कोई इनकार कर नहीं सकता है, और दूसरी बात उस कर्म को करते हुए बंधन में न पड़े, ये केवल सीखना। तो कर्तव्य कर्म तो हमको करना है, मैनेजमेंट हमको करनी है, लेकिन उस मैनेजमेंट में हमारा लक्ष्य है लोगों को कृष्ण भावना में लाना, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना जैसे वो कृष्ण भावना में बढ़ सके। हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो हमारे सामने कि हम मैनेज कर रहे हैं इस काम के लिए, तो फिर हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। लेकिन हमारे मैनेजमेंट के पीछे उद्देश्य अगर, एक प्रेसिडेंट महाराज कह रहे थे कि जब मैं प्रेसिडेंट था तो मैं केवल सबसे मुख्य एक मेरा उद्देश्य होता था कि भगवान की सेवा कितनी उत्तम और अच्छी तरह से हो, बाकी सारा मैनेज भगवान कर लेंगे। मेरा दृष्टिकोण भगवान के ऊपर था। इंद्रद्युम्न महाराज कह रहे थे, मैं प्रेसिडेंट था फ्रांस में, तो मेरा सिर्फ एक लक्ष्य था कि हमारे मन ठाकुर जी की पूजा कितनी अच्छी और फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। अगर भगवान प्रसन्न है तो बाकी चीज़ें भगवान अपने आप संभाल लेंगे। तो मैनेजर को का केंद्र भगवान और भगवान की भक्ति में लगाना होएगा तो फिर सबको कैसे भी जो उसकी योग्यता है उसके अनुसार सेवा में लगा लेगा। लेकिन अगर वो केंद्र भगवान नहीं रहा तो फिर समचित्ता रहना मुश्किल है। तो इसलिए समचित्ता के दो अर्थ यहाँ लिखे थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। पहला समचित्ता का अर्थ लिखा था जिसके हृदय में भगवान सदा के लिए विराजमान है, फुली कंसंट्रेट, कंप्लीटली कंसंट्रेटिंग ऑन सुप्रीम लॉर्ड। और दूसरा लिखा था ऐसा व्यक्ति सबके साथ बराबर का व्यवहार करेगा, वो समचित है। तो समचित्ता के दो अर्थ जो हैं, पहला अर्थ साधु का है और दूसरा अर्थ मैनेजमेंट का है। ये दो अर्थ लिखे हैं यहाँ समचित्ता के।
बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा आपने बताया भगवान को केंद्र बिंदु रख के ही सब सेवा करनी।
हाँ, अगर हमारा केंद्र बिंदु वो है तो कोई समस्या नहीं है। अगर हम वहां से थोड़े नीचे आ गए, मेरा भाई मेरे पक्ष का तेरे पक्ष का, तो फिर तो पक्षपात हो ही जाएगा। हरे कृष्णा
जी, भाई बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी। हमारे हमारे नाम गोविंद प्रभु जी हैं टेम्पल में, ब्रह्मचारी, वो पूछेंगे।
क्या कह रहे हैं नाम गोविंद?
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी।
हाँ जी प्रभु जी, बहुत
बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रवचन के लिए।
हरे कृष्ण
जी, आपने एक बताया था कि तो जो रूप गोस्वामी का कि नाम रूप कुंड लीला कीर्तन का बताया था, तो मतलब नाम कीर्तन तो समझ में आता है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, संकीर्तन भी करते हैं, तो रूप कीर्तन गुण लीला कीर्तन ये क्या है? और दूसरा कि सिर्फ नाम कीर्तन करेंगे इससे चल जाएगा या तीनों चारों को ही करना मतलब चाहिए?
भक्ति रसामृत सिंधु में तीन कीर्तन लिखे हैं रूप गोस्वामी ने, कीर्तन की परिभाषा लिखी है तीन। पहले लिखा है गुण कीर्तन, उसके लिए भी एक श्लोक उद्धृत किया है भागवत से जहाँ भगवान के गुणों का वर्णन है, जैसे भगवान भक्त वत्सल है, भगवान करुणानिधि है, और एक भगवान के रूप का कीर्तन है कि भगवान कितने सुंदर है, और एक भगवान के नाम का कीर्तन है, और आदि में भगवान के धाम का कीर्तन भी होता है। तो ये जो भागवत पढ़ते हैं ये भगवान का रूप का कीर्तन है, जब कहा जाए तो भगवान के रूप का कीर्तन है, क्यों भगवान की लीला का कीर्तन है इसमें, भगवान के गुण का कीर्तन है। और फिर लिखा है कि इन सब कीर्तनों में नाम कीर्तन सर्व श्रेष्ठ है। सारे कीर्तन है ये सभी कीर्तन के अंतर्गत आते हैं, परंतु भगवान के नाम का कीर्तन है उसमें ये सब समाये हुए हैं। जब नाम कीर्तन में सिद्धि हो जाएगी तो ये सब कुछ, ऐसे एक जगह प्रभुपाद ने लिखा है अगर हम नाम का कीर्तन अच्छा करेंगे तो हमारे को भागवत पढ़ने में रुचि होगी, तो फिर हम रूप लीला कीर्तन का भी रस आस्वादन कर सकेंगे। तो नाम कीर्तन सब में श्रेष्ठ है, कीर्तन सबसे मुख्य शक्तिशाली अंग है, परंतु ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में कीर्तन के तीन विभाग तो सीधे लिखे हैं और आदि भी लिखा है। और वैष्णव समाज में चार कीर्तन माने गए हैं, नाम रूप गुण लीला धाम। धाम का भी कीर्तन करते हैं, धन्य वृंदावन धाम, वृंदावन रमणीय स्थान, ये कीर्तन जो है धाम का कीर्तन भी है, गुण का कीर्तन भी है। गुण का कीर्तन ये है श्री चेतन पति तपावन हेतु तव अवतार मोसम पति न पाए बार, ये भगवान का गुण कीर्तन है कि भगवान पतितों का उद्धार करते हैं। ऐसे भगवान का रूप का कीर्तन है, हम अधर पे बांसुरी धरी हुई है और मुस्कुराते हुए, ये बहुत सुंदर श्लोक है मेरे जवान पे ने, बंसी विभूषत करानन भात पीताम्बरात, ये जो भगवान के बहुत सुंदर रूप का कीर्तन है, अधरों पे ऊपर बंसी है, पीताम्बर पीला पहना हुआ है, मोर पंख धारण किया हुआ है, ये भगवान के बहुत सुंदर रूप का कीर्तन है। ब्रहा पीडम नटवर वपुकरण युकरण इकारकम विभ्रतवास, ये जो कीर्तन है गोपी गीत का, ये भगवान के रूप का बहुत सुंदर कीर्तन है। तो ये तो कीर्तन तो है बहुत प्रकार के, और ये रोज भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, ये भी कीर्तन है, प्रभुपाद जी लिखा है, ये भगवान के गुण रूप का कीर्तन है। और नाम कीर्तन तो मुख्य रूप से महाप्रभु नाम कीर्तन का ही प्रचार करने के लिए आए थे। और दूसरा क्या प्रश्न था आपका?
दूसरा ये था प्रीजी, जैसे एक श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण ये 9 विधि है, तो इसमें मतलब एक थोड़ा रहता है कि मतलब सभी हैं, पर कहीं प्रोपा जी के जाते हैं और उसमें सुनते हैं श्रवणम इज अवर प्रोसेस, और फिर कीर्तनम का भी आता है, तो मतलब क्या बैलेंस क्या है, मतलब दोनों एक ही चीज है या कैसे इसको मतलब समझे?
इसको इसके इसके लिए रूप गोस्वामी ने लिखा है एक अंग भक्ति और सर्वांग भक्ति। कोई एक अंग में प्रवीण हो जाए तो भी फल मिल सकता है, जैसे श्रवण में सब परीक्षित महाराज श्रवण के आचार्य हैं, केवल श्रवण करने से भगवान की प्राप्ति की। सुखदेव महाराज कीर्तन के आचार्य, केवल कीर्तन करने से भगवान की प्राप्ति की। प्रहलाद महाराज स्मरण के आचार्य हैं, स्मरण करने से भगवान को प्राप्त कर लिया। और पाद सेवन लक्ष्मी देवी, ये भगवान के चरणों की सेवा कर रही। अर्चनम के प्रथु महाराज केवल एक भक्ति के अंग से सिद्धि को प्राप्त कर लिया। वंदनम अक्रूर महाराज ने, अक्रूर जी ने वंदना से भगवान को प्राप्त कर लिया। और दास्य से हनुमान जी ने, सखा से अर्जुन ने, आत्मनिवेदन से बलि महाराज ने, और सर्वंग भक्ति में अम्बरीश महाराण उदाहरण है। अम्बरीश महाराज सर्वंग भक्ति करते थे। तो एक अंग भक्ति करें, सर्वंग भक्ति करें, दोनों भक्ति कर सकते हैं। एक अंग भक्ति करें तो केवल श्रवण में इतना तलीन होना चाहिए कि परीक्षित महाराज की तरह 7 दिन बिना खाए पिए कथा सुनने के लिए बैठा रहे, तो समझ ले एक अंक में वो सफल हो गया। हम तो 1 घंटे के बाद भी भागना चाहते हैं, इसका मतलब हमको थोड़ा थोड़ा सबका करना पड़ रहा है कि किसी एक में प्रवीण होने। कीर्तन भक्ति की तो शुद्धता ये है कि नयनम गलद श्रुधार या वदनम गदगद रुद्ध या गिरा। कीर्तन करे तो आंखों में आंसू आ जाए, पुलकित हो जाए शरीर। नृत्य करते करते वरकेश्वर पंडित की तरह 3-3 दिन कीर्तन में नृत्य करता रहे और गाता रहे, ये कीर्तन की सिद्धि है। हमारा क्या है, एक आधा घंटा कीर्तन, आधा घंटा श्रवण है, आधा घंटा प्रसाद है, तो ये क्या हमारा है, मिक्स भक्ति चल रही है। अब देखे कौन सी, इसलिए इसलिए सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा है भगवान का दर्शन तो हम सबका लक्ष्य है, बीच वाली भक्ति हरेक की रुचि के अनुसार है। आपकी जिसमें रुचि है वो करो, उसमें आगे बढ़ो, उसको पक्का करो। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय,
सर्वभौम प्रभु जी की
हरि बोल, हरि बोल।
बहुत बहुत विशेष धन्यवाद, आभार प्रकट करेंगे।
हरे कृष्ण,
प्रभु जी ने हमें उस दिन मैसेज भी दिया नए साल के लिए, और आज प्रभु जी बहुत अद्भुत कथा प्रभु जी ने की, हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया।